प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता।
सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को सत्यवचन टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत हम पुराने नियम से लेव व्यवस्था की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक आराधना विधियों की पुस्तक है और प्रायश्चित तथा पवित्रता इस पुस्तक के मुख्य शब्द हैं। ये पुस्तक सिखाती है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसके समीप आने वाले को पवित्र होना अनिवार्य है। सो इसी परिचय के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं, किंतु इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे व्यस्त जीवन में ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रुचि रखते हैं। आप हमारे भोजन पदार्थों में भी रुचि रखते हैं। इसलिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जब हम लव्य व्यवस्था की पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, आप हमें समझ और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और प्रभु अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। सहायता करें कि हम आपके परिदृश्य को स्वीकार कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी भयंकर रोग से पीड़ित है या किसी घोर समस्या में उलझा हुआ है, कोई पारिवारिक समस्या है या कोई व्यक्तिगत समस्या है, प्रभु आप उनकी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इसके 11वें अध्याय के कुछ पदों पर ध्यान किया और इन पदों में हमने सीखा कि परमेश्वर पिता अपने लोगों के भोजन अर्थात आहार संबंधी बातों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने इसराइलियों से कहा, जिन पशुओं के खुर फटे व चिरे हों और जो जुगाली करते हों, उन्हें तुम खा सकते हो। अर्थात जिन पशुओं में ये विशेषता नहीं है, उन्हें तुम नहीं खा सकते। इसी के साथ 9वें पद में उन्होंने जल जंतुओं के विषय में भी बताया कि कौन से जल जंतु हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और छिलके हों, तुम उन सबको खा सकते हो, और जिनके पंख और छिलके ना हों, वे तुम्हारे लिए घृणित हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेव्य व्यवस्था की पुस्तक हमको बताती है कि वे समुद्री जीव हम खा सकते हैं जिनके पंख और छिलके हैं। मित्रों, हमने सीखा कि हमारे विश्वासी जीवन में इन बातों का महत्व है। एक विश्वासी जन को पवित्र आत्मा रूपी पंख तथा धार्मिकता के वस्त्र रूपी छिलकों से लैस होना आवश्यक है। यही उसके शुद्ध होने की पहचान है, और जब वो शुद्ध है तो परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है। आज हम आकाश में उड़ने वाले शुद्ध व अशुद्ध पक्षियों के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वाइये हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, जो पुराने नियम की तीसरी पुस्तक है, उसका 11वां अध्याय। लैव्य व्यवस्था 11 अध्याय 13 से 19 पदों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इन पदों में पक्षियों के विषय में बताया गया है जो शुद्ध व अशुद्ध पक्षी हैं। यह इस प्रकार से लिखा है, और इन पक्षियों को घृणित जानना। घृणित होने के कारण ये ना खाए जाएं, अर्थात उकाब, गिद्ध, काला गिद्ध, चील और विभिन्न प्रकार के शिकरे और सब प्रकार के कौए, शत्रुमुर्ग, उल्लू, समुद्री टिटरी और भांति भांति के बाज, गुग्गू, जलमुर्गाबी, बड़ा उल्लू, राजहंस, धनेश, राजगिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। मित्रों, इनका कोई विशेष चिन्ह नहीं है, किंतु ये सब वे पक्षी हैं जो दूसरे पशु और पक्षियों का मांस खाते हैं। यही इनका एक चिन्ह है। ये लोथों को भी खाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये घृणित पक्षी हैं। मित्रों, ये सूची पलिश्तीन देश में पाए जाने वाले अशुद्ध पक्षियों की है। ये प्रकट करता है कि मूसा की व्यवस्था केवल इसराइलियों पर तथा एक स्थान विशेष में लागू होती थी। तत्पश्चात हम देखेंगे भूमि पर रेंगने वाले शुद्ध व अशुद्ध कीड़े मकोड़े। आइए 20वें पद से आप हमारे साथ देखें। और जितने पंख वाले कीड़े चारों पैरों के बल चलते हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित हैं। परंतु उन पंख वाले कीड़ों में से जो चारों पैरों के बल चलते हैं, तुम केवल उनको खा सकते हो जिनके भूमि पर कूदने फांदने के लिए पैरों में जोड़ होते हैं। जिन्हें तुम खा सकते हो वे ये हैं: भांति भांति की टिड्डियां, भांति भांति की दल वाली टिड्डियां और भांति भांति के झींगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु अन्य पंख वाले कीड़े जो चारों पैरों के बल चलते हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित हैं। तब हम 24वें पद से आगे देखते हैं, जहां हमको अशुद्ध पशुओं की लोथ का स्पर्श करने को मना किया गया है। आइए देखें 24वें पद से देखिए, इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। किनके कारण? आगे हमको बताया गया है, जो कोई उनकी लोथों को छुए वह संध्या तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनमें से किसी एक की भी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब पशुओं के विषय में जिनके खुर फटे तो होते हैं परंतु पूर्ण रूप से चिरे नहीं होते और जो जुगाली नहीं करते, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरेंगे। जो कोई उनको छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चारों पैरों के बल चलने वाले जीव जंतुओं में से जो चारों पैरों से पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ को छुए वह सायंकाल तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उनकी लोथ को उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सायंकाल तक अशुद्ध रहे, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मैंने आपके लिए 24 से 28 पदों को पढ़ा है। मित्रों, यहां पर संदूषण का महान सिद्धांत हमारे सामने आता है। इस विषय में हम हागे नबी की पुस्तक को देखेंगे। हागे नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 11 से 13 पदों को आप मेरे साथ देखें। इन पदों में हागे नबी इस प्रकार से बताता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इसके विषय में व्यवस्था पूछ, यदि कोई मनुष्य अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधे और उस आंचल से रोटी, पकाए हुए भोजन, दाख मधु, तेल या अन्य किसी भोजन वस्तु को छुए, तो क्या वह वस्तु पवित्र ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। तब हागे ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति शब से अशुद्ध हो जाए और उनमें से किसी वस्तु को छू ले, तो क्या वह वस्तु अशुद्ध ठहरेगी? तब याजकों ने कहा, हाँ, वह अशुद्ध हो जाएगी। तब हागे ने उत्तर दिया, यहोवा की यह वाणी है कि ये लोग ऐसे ही हैं और मेरी दृष्टि में ये जाति ऐसी ही है। उनके हाथ का प्रत्येक कार्य ऐसा ही है और उनका चढ़ावा भी अशुद्ध है। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि शुद्धता या पवित्रता स्पर्श से स्थानांतरित नहीं होती। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई मनुष्य अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधे और उस आंचल से रोटी, पकाए हुए भोजन, दाख मधु तेल या अन्य किसी भोजन वस्तु को छुए तो वह वस्तु पवित्र नहीं ठहरेगी, और उसके विपरीत गंदगी पाप तथा अपवित्रता स्पर्श के द्वारा स्थानांतरित होती है। जैसा कि यहाँ 13वें पद में हमने पढ़ा, यदि कोई व्यक्ति शब्द से अशुद्ध हो जाए और इनमें से किसी वस्तु को छू ले तो क्या वह वस्तु अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने कहा हाँ, वह अशुद्ध हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि अधर्मी मनुष्य धर्म के कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, एक दुष्ट और अधर्मी जन धर्म के कार्य अपने भीतर या अपने द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे कार्य जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप अधार्मिकता में हो, दुष्टता में जीवन व्यतीत करते हो, आप अपने भीतर धार्मिकता नहीं ला सकते, आप अधार्मिकता में से धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर सकते। यही नियम मानव समाज पर भी लागू होता है। एक गैलन गंदे पानी में एक गैलन गंदा पानी और मिला देने से वह स्वच्छ नहीं हो सकता। इसके विपरीत एक गैलन स्वच्छ पानी में यदि एक बूंद गंदा पानी डाल दिया जाए तो वह संदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। साधारण शब्दों में एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, किंतु सारे तालाब का पानी एक मछली को स्वच्छ नहीं कर सकता। तब 28 से 38 पदों में हम एक अन्य बात को देखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो कोई उनकी लोथ को उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सायंकाल तक अशुद्ध रहे, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं में से तुम्हारे लिए ये अशुद्ध हैं, अर्थात वन छचुंदर, चूहा और हर प्रकार के गोह, छिपकली, घड़ियाल, टिकटिक, सांडा और गिरगिट, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ को छुए वह सायंकाल तक अशुद्ध ठहरे, और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वो भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वो काठ का पात्र हो या वस्त्र या खाल या बोरा हो, चाहे किसी काम की कैसी वस्तु क्यों ना हो, वो जल में डाली जाए और वह सायंकाल तक अशुद्ध रहे, इसके पश्चात वह शुद्ध ठहरेगी। इन पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन से कैसी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। वे उनके जीवन की छोटी और बड़ी सभी बातों में रुचि रखते हैं। तब 33वें पद में हम देखते हैं, और इन जंतुओं में से यदि कोई मिट्टी के किसी पात्र में गिर पड़े तो उस पात्र में जो कुछ हो वो भी अशुद्ध ठहरे, और उस पात्र को तुम तोड़ डालना। यदि उसके अंदर खाने के योग्य कोई चीज हो जिस पर पानी पड़ जाए तो वह सब अशुद्ध ठहरे, और यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वो भी अशुद्ध ठहरे। और जिस किसी वस्तु पर इनकी लोथ का कोई टुकड़ा गिरे, चाहे वो तंदूर हो या चूल्हा, वो अशुद्ध ठहरे और वह तोड़ डाला जाए। ऐसी वस्तु अशुद्ध हो जाती है और वे तुम्हारे लिए अशुद्ध बनी रहेंगी। सोता या जलकुंड जिसमें जल इकट्ठा होता हो वह तो शुद्ध रहेगा, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और यदि इनकी लोथ का कोई टुकड़ा किसी बोए जाने वाले बीज पर पड़ जाए तो वह बीज शुद्ध ठहरे, पर यदि लोथ में का कोई टुकड़ा भिगाए हुए बीज पर पड़े तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। मित्रों, हम इन पदों में परमेश्वर के परिदृश्य को देखते हैं कि परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध में कैसा भारी अंतर रखता है। परमेश्वर अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करने को तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ये नियम दिया कि वे अशुद्ध होने से बचें और अशुद्ध वस्तुओं को ग्रहण ना करें, क्योंकि परमेश्वर शुद्धता और पवित्रता का परमेश्वर है। हमारे सामने यहां एक महत्वपूर्ण संदेश है। परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए अपने ही पुत्र प्रवेश मसीह को भेज दिया, ताकि उसके बहुमूल्य रक्त के द्वारा मानव जाति के पाप धोए जाएं, शुद्ध और पवित्र किए जाएं, ताकि मानव जाति परमेश्वर के लिए समक्ष ग्रहण योग्य ठहरे। 37 और 38 पदों में हम एक महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यदि इनकी लोथ का कोई टुकड़ा किसी बोए जाने वाले बीज पर पड़ जाए तो वह बीज शुद्ध ठहरे, पर यदि लोथ में का कोई टुकड़ा भिगाए हुए बीज पर पड़े तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। मित्रवर, इसका क्या तात्पर्य है? सूखा बीज अपने सूखे कवच के कारण शुद्ध ठहरेगा, किंतु गीला बीज कवच दुर्बल हो जाने के कारण अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की संतान को कवच तथा अस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता है, जैसा कि इफिसियों के पत्री के 6:11 में बताया गया है, जहां प्रेरित पौलुस एक विश्वासी जन को ये परामर्श देते हैं कि परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। क्योंकि प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए मेरे मित्र, परमेश्वर की संतान को कवच तथा अस्त्र शस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता है। तब उसके पश्चात हम रेंगने वाले पशुओं से संदूषण के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए देखें, और तब अग्रिम पदों में बताया गया है कि और जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मर जाए तो जो कोई उसकी लोथ को छुए वह सायंकाल तक अशुद्ध ठहरे। जो कोई उसकी लोथ में से कुछ खाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सायंकाल तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सायंकाल तक अशुद्ध रहे। फिर अग्रिम पदों में हम रेंगने वाले पशुओं से संदूषण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आइए आप हमारे साथ देखिए 41वें पद से आगे इस प्रकार लिखा है, और भूमि पर रेंगने वाले सब प्रकार के जंतु अशुद्ध हैं। ध्यान दें, भूमि पर रेंगने वाले सब प्रकार के जंतु अशुद्ध हैं, वे ना खाए जाएं। भूमि पर रेंगने वाले सब प्राणियों में से जितने पेट के बल रेंगते या चारों पैरों के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पैर होते हैं, उनमें उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घृणित हैं। तुम किसी भी रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घृणित न ठहराना और न उनसे अपने आप को अशुद्ध करना, जिससे कि तुम अशुद्ध ठहरो। मित्रों, रेंगने वाले सभी जंतु अशुद्ध व घृणित हैं, और प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि वे ना खाए जाएं। सर्प को परमेश्वर ने यही श्राप दिया, इसलिए वो भी घृणित है, उसे भी ना खाया जाए। 44 से 47 पदों में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए अपने आप को शुद्ध करना और पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ध्यान दीजिए, यहां परमेश्वर पिता स्पष्ट करते हैं वो ये नियम उनको क्यों दे रहे हैं। वो इस बात का स्पष्टीकरण यहां पर दे रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करना और पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अतः तुम भूमि पर के किसी भी रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं यहोवा हूं और तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पशुओं, पक्षियों और पानी में चलने फिरने वाले तथा भूमि पर रेंगने वाले सब प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध तथा खाने और न खाने के योग्य के बीच भेद किया जा सके। मित्रों, परमेश्वर पिता शुद्ध और अशुद्ध में तीव्र अंतर रखते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं में पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। ये परमेश्वर के जन की सच्ची परख है। परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जो लोग अपवित्रता की दशा में परमेश्वर की आराधना उपासना करने का प्रयास करते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर पवित्र है। हमें पवित्रता की अवस्था में परमेश्वर के समीप आना है। मेरे प्रिय मित्र, आपको निर्णय लेना होगा कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है या संसार के साथ। परमेश्वर पवित्र है और ये संसार संदूषित है। ये संसार घृणित है, और इसलिए परमेश्वर पिता अपनी संतान से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए अपने आप को शुद्ध करना और पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मित्रों, आपको स्मरण रहे कि परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध के विषय में व्यवस्था इसलिए दी है कि इनमें भेद किया जा सके। परमेश्वर की संतान को इस संदूषित संसार का बन के नहीं रहना है, इसके पाप व अधर्म में सम्मिलित नहीं होना है। इन पर तरस तो खाना है, इन पर दया तो करनी है, इस संसार के लिए प्रार्थना भी करनी है, किंतु इसके साथ संगति व सहभागिता नहीं करनी है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान से कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।